जय श्री राधा राजभर ललिता पिशका शक वृंद की जय सीता राम लक्ष्मण हनुमान की जय श्री श्री गौर निताय की जय जगद गुरु श्रील प्रभुपाद की जय ग्रंथराज श्रीमद भगवतम की जय सामवेद भक्त वृंद की निताय गौर प्रेमानंदी हरिर्भ ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजनशलकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनभीष्टं स्थापितं येन भूतले शेङ्गरूपकदामयं ददाति शपदन्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलम् श्रीगुरुं समांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथानितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं वरेण्यसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादं सहगण ललिता श्रीविशकनितांसा हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगदपते गोपीश गोपिकांत राधाकांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरि प्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदन्नाय कृष्णो प्रेम प्रदाय कृष्णाय कृष्णचैतन्य नम्नि गौरीतिशे नमः नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यं जगन्नाथाय ते नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्रीअद्वैत गदाधर श्रीवासद श्री गौर भक्त वृंदम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमः भगवते वासुदेवाय आनंद लीला मय विग्रहाय हिमावधि छवि सुंदराय तस्मै महाप्रेम रस प्रदाय चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद चैप्टर 3 वर्स नंबर 29 जन्मते मय्य सौ पापो मा विद्धन मधुसूदनं समुद्दीजे भवेद्धेतं कंसादामधिराधि जन्मते मयि असौ पापं मा विद्धन मधुसूदनं समुद्दीजे भवेद्धेतं कंसादहमधिरधि Matajis. What to what meaning? Janma, janma, te, tumhara. भगवान का मोई मेरे गर्भ में असो ओ कंस पाप पापी महाविद्वत हो सकता है कि समझ ना पाए मधुसूदन हे मधुसूदन समझ दीजिए चिंता से पूर्ण में भवत हेतो आपके प्रकट होने से कांक्षा कंस से जिसका मुझे कोटु अनुभव है अहम मैं अधीरधि अधिकाधिक उद्विग्न हूँ अनुवाद कृपया मेरे पीछे दौड़ रही है हे मधुसूदन आपके प्रकट होने से मैं कंस के भय से अधिकाधिक अधीर हो रही हूँ अतः कुछ ऐसा कीजिए कि वो पापी कंस यह न समझ पाए कि आपने मेरे गर्भ से जन्म लिया है तात्पर्य कृपया ध्यान से सुनिए देवकी ने भगवान को मधुसूदन नाम से संबोधित किया उन्हें ज्ञात था कि भगवान ने मधु जैसे अनेक असुरों का वध किया है जो कंस से सैकड़ों हजारों गुना बलशाली थे तो भी दिव्य बालक के स्नेहवश उन्हें आशंका हो रही थी कि कंस उसका वध कर देगा भगवान की असीम शक्ति को न सोचकर वे स्नेहवश भगवान के विषय में सोच रही थी इसीलिए उन्होंने दिव्य बालक से अंतर्धान होने की प्रार्थना की ये कंस कौन था जिनका भय से देवकी भयभीत हो रही थी इसके बारे ये बतलाया गया है कि एक बार विदर्भ राजा की कन्या वो पद्मा उग्रसेन के पत्नी थे तो जब पितृगृह में थे उस समय अपने सखियों के साथ एक पर्वत पर चले गए वहाँ पे एक लेक में सरोवर में जो तैरते थे उसी समय कुबेर का एक अनुचर भृत्य गभिला राक्षस विमान से ऊपर से जा रहे थे जब पद्मा को देखे तो पद्मा का इतना सुंदर जो रूप देखभाल करके उनका मन में काम भाव उदित हो गया और काम चरित्र करने के लिए क्या किए वो गभिला विमान से उतर करके उग्रसेन के जैसा रूप वैसा रूप धारण किए, ऐसा ही भय से पद्मा का बोल रहा था, प्रिय तेरे विरह से मैं जीवन जी नहीं सकता, कृपा आओ। हाँ, ती जब ऐसा बात बोले थे तो पद्मा जब उनके पास आई थी उसी समय ये गोभीला आलिंगन करके उनके साथ ऐसे अवैध भाव से रतिक्रिया की। इसके बाद पद्मा को जब पता चला गया ये उनके स्वामी नहीं है, ये नकली रूप धारण करके आए हैं, तब पद्मा अभिशाप देने के लिए जब प्रस्तुत हो गए तो उस समय गोभीला ने बतलाया, जो मैं तो राक्षस जाति हूँ, मैं कुबेर का एक सेवक हूँ, हमारा ये स्वभाव है दूसरे स्त्री को दूसरे संपद को छीन कर करना, बल प्रयोग करके छीन कर भोग करना, तो तेरा अभिशाप से मुझे कुछ भी हो नहीं सकता। और मैं तुम्हारे घर में जो मेरा बीज प्रदान किया उससे ऐसा ही एक संतान उत्पन्न होगा जो त्रि जगत को भीतत्रस्त कर देंगे। ये कह करके गोभीला उस स्थान से चला गया। तो उसी समय पद्मा क्या किए, अपना गर्भ को नष्ट करने के लिए बहुत सारे जड़ी बूटी लिए थे, लेकिन गर्भ संतान जो भ्रूण बोला, हे माता आप क्यों कि ऐसा ही मारने मुझे मारने के लिए ऐसा कोशिश कर रहे हो, आप जानते नहीं मैं कौन हूँ। और जितने सारे जीव अपना अपने पूर्व जन्म के अच्छा काम बुरे काम का फल भोग करने के लिए इस जन्म मिला है, तब जितने भी चेष्टा करेंगे उससे मुझे मार नहीं सके। तब ऐसा ही जब बात सुने तब पद्मा ओ गर्भ को जो भ्रूण अतः संतान को विनाश करने के लिए जो प्रयास कर रहे थे उससे निवृत्त हो गए। तो ऐसा ही वो पद्मा के गर्भ से जो संतान पैदा हुआ वही कंस है। तो कंस कौन था, पिछले जन्म में जब समुद्र मंथन के समय भगवान विष्णु के साथ उनका युद्ध हुआ था, विष्णु के हाथ में वो मर चुका था, वो उनका नाम था कालनेमी। लेकिन कालनेमी का असुर लोक का गुरु जो शुक्राचार्य संजीवनी मेडिसिन से और संजीवनी मंत्र से उनका पुनर्जीवित कर दिया। तब उन्होंने फिर प्रतिज्ञा किए विष्णु के साथ और एक बार युद्ध करना है, इसीलिए मंदर पर्वत पर चला गए कठोर तपस्या किए। कठोर तपस्या से अभी वो पद्मा के गर्भ से ये गोभीला औरस से जन्म लिया है। एक्चुअली वो कंस उग्रसेन का पुत्र नहीं था, एक राक्षस गोभीला का औरस से पद्मा के गर्भ से ऐसे ही जन्म लिया है। तो कंस ऐसे ही भयंकर असुर था। एक बार क्या हुआ, जरासंध का शिविर बहुत सारे सैन्य थे, तो वहाँ पे क्या हुआ, ये कुबलाय फीड था, हाथी नाम सुना, तो कुबलाय फीड अपना जो लोहे द्वारा बने है सिकल चेन वो तोड़ करके वहाँ से भाग गए। कहाँ उपस्थित है, कंस के सम्मुख में जा उपस्थित हो गए। और कंस वो हाथी का सूंड पकड़ करके ऐसा ही जमीन पर गिरा दिया, तो हाथी फिर उठ करके कंस को जब फिर आक्रमण करने के लिए प्रयास करा तो उस समय कंस उनको पकड़ करके इतना दूर फेंक दिया, 120 किलोमीटर दूर। वो जो कंस का सैनिकों का जो शिविर था उनका बीच में फेंक दिया। धीरे देखभाल करके जरासान अत्यंत प्रसन्न हो गए, ऐसा वीर। तो वो कंस को प्रसन्न करने के लिए अपना दो जो लड़की थी अस्थि और प्राप्ति, ये दोनों को उनके साथ शादी कर दिया। उसके साथ साथ ये कुबलाय पेड़ भी और जो हाथी उनका प्रदान किया। तो कंस वहां से कहाँ चले गए, वहां से चले गए महिष्मतिपुर। वहां पे जितने वो महिष्मतिपुर जो राजा है, राजा के 8 पुत्र थे, चानूर मुष्टिक शल शल ऐसे ही 8 पुत्र थे। वो सभी के साथ चुनौती दे रहे थे, हमारे बीच में मल्ल युद्ध होगी, मुझे जब परास्त कर देंगे तो मैं आप सभी का दास बन जाऊंगा, मैं जब आप सभी का परास्त कर देंगे तो आप सभी का मेरे मुझे दास बना लूंगा। ऐसा कंडीशन करके वो जो मल्ल युद्ध वो सभी के साथ जब हुआ था, उस समय कंस आसानी से चानूर मुष्टिक आदि जितने सारे वो 8 पुत्र थे महिष्मती राजा के, सब पुत्र को परास्त कर दे, देख करके वो सभी को अपना दास बना लिए। इसके बाद दीविद राक्षस बंदर और कैसी जितने सारे असुर थे वो सभी को शायद ऐसा ही मल्ल युद्ध करके सभी को परास्त करके वो सभी को दास बना लिए। इसके बाद अगासुर बकासुर और जो है जितने सारे असुर तृणावर्त असुर बत्सासुर और जो नरकासुर संबरासुर कालजवन ये जितने सारे थे वो सभी के साथ ऐसा युद्ध करके सभी को परास्त करके वो सभी को अपना दास बना लिए। इसके बाद वो कंस कहाँ चला गए, ना सोनितपुर, ना सोनितपुर जाने से पहले वो चला गया कहाँ, वो महेंद्र पर्वत जहाँ पे परशुराम विराजमान है वहाँ पे जाके क्या किए, वो पर्वत को पकड़ करके हिला दिया। तो पर्वत पर परशुराम है हाँ, तो परशुराम जब समझ गए पर्वत परशुराम है और जब पर्वत हिला दिया तो परशुराम मन में बहुत क्रोध आ गया हाँ। तब तो कंस समझ गया ये तो भगवान परशुराम है, तो शासक क्या किया, उनका चरण में प्रणत होकर के क्षमा प्रार्थना करा। तो उस समय परशुराम ने बोल रहे हैं, मेरा पास जो धनुष है ना, ये भगवान विष्णु शिवजी को प्रदान किए थे, आज शिवजी धनुष है, इनका वजन इसका वजन कितना है ना, 100,000 भार समझ रहे हैं, 100,000 भार। पहले तो भार जो वजन है, भार का मतलब है 450 ग्राम ऐसा ही, तो 100,000 भार वो धनुष का वजन था। तुम इस वो 7 ताल पेड़ के द्वारा निर्मित है ये धनुष, वो महाधनुष माना जाता है विष्णु धनुष। तो ये धनुष में जब गुण देंगे तब तो मैं तुमको कुछ भी करूंगा नहीं, जब गुण नहीं दे सकेंगे तो मैं तुम्हें जितने सारे शक्ति है मैं नाश कर दूंगा। तो कंस ये सुन करके बाम हाथ से धनुष उठा करके जब गुण चढ़ा, परशुराम इतने प्रसन्न हो गए वो धनुष को उनका प्रदान किया कंस को। अब बोले कोई ये धनु जो जिन्होंने ये धनु तोड़ेंगे वही तुम्हारे मार डालेंगे मारेंगे, तुमके हाथ में तुम्हारा मृत्यु होगा ये बताए। तो वो धनुष लेकर के कंस कहाँ चला गया, सोनितपुर। सोनितपुर किसका राज्य है, बनासुर का राज्य है वहां पे चला गया। वो बानासुर के साथ चुनौती दे रहे हैं मल्ल युद्ध करने के लिए। बानासुर आ गए, वो तो बलि महाराज के पुत्र है ना, महापराक्रमशाली है, वो आ गया। तो बानासुर वो शिवजी का महान भक्त है। शिव जी का पता चला गया जब ये दोनों के बीच में युद्ध होगा तो कंस परशुराम से वर प्राप्त है, किसी को उनको परास्त नहीं कर सके, केवल कृष्ण अलावा किसी उनको परास्त नहीं कर सकेगा। तो शिव जी अपना भक्तों को सुरक्षा देने के लिए, बानासुर को सुरक्षा देने के लिए वहाँ पे उपस्थित हो गए, प्रकट हो गए। वही बानासुर को बोल रहे हैं, बानासुर इसके साथ युद्ध करके तुम्हें इसके परास्त नहीं कर सके, क्योंकि वो परशुराम से ऐसे ही वर प्राप्त है। तो तुम दोनों के बीच में वो मैत्री स्थापन करो, ये बोल करके दोनों के बीच में मैत्री स्थापन कर दे। ऐसा ही जब ऐसे कर दिया तो उसी समय क्या हो, जितने सारे असुर सब को लेकर के कौन से कहाँ चले गए, स्वर्ग राज्य आक्रमण करने के लिए। तो वहां पे वो धनुष से जब बाण निकला, वो सौ सौ बाण जब निकला था, वो देखभाल कर इंद्र आदि जितने सारे देवता थे वो हमारा लोग छोड़ करके सब भाग गए। तब वो कंस क्या किए, इंद्र का वो सिंहासन और वो जो अम्ब्रेला छत्ता लेकर के असुर के साथ अपना राजधानी मथुरा में लौट आए। ये कंस है अत्यंत प्रभावशाली, 33 करोड़ देवता जो कोटि देवता सभी को परस्त कर दिया था। तो ये कंस, इसीलिए कंस महापराक्रमशाली थे। ते कंस के भय से देव की ऐसे भयभीत होकर के कृष्ण के पास ऐसे प्रार्थना कर रहे थे। लेकिन कृष्ण वो कंस से बढ़कर बहुत सारे असुर का वध किया था, जैसा मधु कैटव आदि बहुत सारे असुर को, उस जितने सारे असुर थे वो सभी असुर कंस से 100 करोड़ 1000 गुना अधिक बलशाली थे। इसके बारे बोल रहे हैं तो कंस कृष्ण वो सभी को बात कहते हैं। लेकिन कृष्ण अभी देवकी के सम्मुख में चतुर्भुजा रूप लेकर के प्रकट है, जामलीला प्रकट किया है। तो भगवान का असली रूप है तो द्विभुज है, चतुर्भुजा चतुर्भुज रूप लेकर के क्यों प्रकट हो गए, इसके बारे में बताया गया है। कृष्ण का असली स्वरूप क्या है, ये चैतन्य चरितामृत में बतलाया गया है। जो कृष्णेर जतेक लीला सर्वोत्तम नर लीला, नर बपु है तहार स्वरूप। कृष्ण के जितने सारे लीला है, जितने अवतार रूप धारण करके लीला प्रकट किए है, वो सभी से कृष्ण को सभी में से असली रूप कौन है, जब कृष्ण का जो द्विभुज मनुष्य के भांति आदमी के भांति जो रूप है वही कृष्ण का असली रूप है। वो कैसा है, गोप बेशो बेनु करो नव किशो नोटो बरो नर लीला है अनुरूप। भगवान का असली स्वरूप क्या है, गोपोवेश, गोपोवेश का मतलब कावड़ बॉय, गोप राखल बालक है, गोपोवेश बेनी करो, हाथ में बांसुरी है। कृष्ण जब द्वारका मथुरा में है वही कृष्ण, लेकिन उनके हाथ में कोई बांसुरी नहीं है, है क्या, जब वृंदावन में है तो राखल बालक रूप से जो भगवान कृष्ण वही भगवान का असली रूप है। इसलिए बेनु करो गोपो बेश बेनु करो नव किशोर, नव किशोर का मतलब 11 साल उम्र जैसा, जन्म से 5 साल तक ये बाल्यकाल 5 से 6 से 10 पौगंड माना जाता है, 11 से 15 ये किशोर है और 16 से युवा श्रोता है। तो ये नव किशोर का मतलब 11 साल के सबसे पुरातन होते हुए भी वो भगवान 11 साल के उम्र जैसा ऐसा ही। इसीलिए ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी ये बताया, कौन सा बदला है ना, अच्युतम अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम ଆଦଂ ପୁରାଣ ପୁରୁଷ ନବଯୌବନଞ୍ଚ ବେଦେଶୁ ଦୁର୍ଲଭମ ଦୁର୍ଲଭମାତ୍ମ ଭକ୍ତ ଗୋବିନ୍ଦମ ଆଦି ପୁରୁଷଂ ତମହଂ ଭଜାମି ଅଦ୍ୱୈତମ ଅଚ୍ୟୁତମ। ତୋ ଭଗବାନ ଏକ ହେ, ଭଗବାନଙ୍କ ବହୁତ ସାରା ରୂପ ହେତେ ହୁଏ ବି ଗଡ୍ ଇଜ ୱାନ୍, ଭଗବାନ ଏକ ହେ କି ନାହିଁ, ହଁ ଅସଂଖ୍ୟ ରୂପ ହେ। ଅଦ୍ୱୈତମ ଅଚ୍ୟୁତମ ଅନାଦି ଅନନ୍ତ ରୂପମ ଆଦମ ପୁରାଣ ପୁରୁଷ, ସବୁ ପୁରୁଣା ପୁରାତନ ପୁରୁଷ ହେତେ ହୁଏ ବି ହର ସମୟ ଗ୍ୟାର ସାଲ ଯୋ କିଶୋର ନବ କିଶୋର ଓଇ ଭଗବାନଙ୍କ ଅସଲି ରୂପ ହେ। ହଁ ତୋ ଭଗବାନଙ୍କ ଭକ୍ତି ସେ କେବଳ ସମଜ ସକ୍ତା, ଭକ୍ତି ଅଲବା ଆଉ ଜିତନେ ସାରା ପନ୍ଥା ହେ, ହଁ କର୍ମ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଯୋଗ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ କହି ସମଜ ନେଇ ସକ। ହଁ ପେଶିଲ ଭକ୍ତି, ଭକ୍ତି କେ ବାରି ଇଏ ଶ୍ରୁତି ମେ ବତା ଗା ହେ। ଭକ୍ତିରେ ବୈନଂ ନୟତି, ଭକ୍ତିରେ ବୈନଂ ଦର୍ଶୟତି, ଭକ୍ତି ବସ ପୁରୁଷ ଭକ୍ତି ଏବ ଭୟସି। କୋଇ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି କରେଙ୍ଗେ, ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି ଓ ଭକ୍ତକୁ କାଁ ଭେଜ ଦେଙ୍ଗେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାସ, ଭଗବତ ଧାମେ ଭେଜ ଦେଙ୍ଗେ। ଭକ୍ତିରେ ବୈନଂ ନୟତି, ଭଗବାନଙ୍କ ପାସ ଭେଜ ଦେଙ୍ଗେ। କୋଇ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି କରେଙ୍ଗେ ଭଗବାନ ପ୍ରତି, ଓ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି ସେ ଭକ୍ତ ଓ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତିମା ବିଗ୍ରହ ଦର୍ଶନ କରେଙ୍ଗେ ତୁମଙ୍କ ସାମ୍ନେ କ୍ୟା ହେ ନା ପ୍ରତିମା ନ ହଉ ତୁମି ସାକ୍ଷାତ ବ୍ରଜେନ୍ଦ୍ର ନନ୍ଦନ ବିପ୍ର ଲାଗି କର ତୁମି ଅକାର୍ଯ୍ୟକାରଣ। ହଁ ତ ଯବ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି କିସିକ ପାସ ହେ, ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି ସେ ଯ ଭଗବାନ ଦର୍ଶନ କରେଙ୍ଗେ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଗ୍ରହ, ତ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଗ୍ରହ ଭଗବାନ ସେ ଅଭିନ୍ନ ହେ। ନାମ ବିଗ୍ରହ ସ୍ୱରୂପ ତିନ ଏକ ରୂପ ତିନେ ଭେଦ ନାଇ ତିନ ଚିଦାନନ୍ଦ ରୂପ। ହଁ ଭଗବାନଙ୍କ ଯେ ନାମ ହେ ଭଗବାନ ସେ ଅଭିନ୍ନ ହେ, ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଯେ ବିଗ୍ରହ ହେ ଓ ବି ଭଗବାନ ସେ ଅଭିନ୍ନ ହେ। ୟାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରମାଣ କିଆ ହେ, ଓଡ଼ିଶା ମେ ଏକ ବିଗ୍ରହ ହେ ଜିନକା ନାମ ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳ, ନାମ ଶୁନା ଓ ଗୋପାଳ ଜୀ ପହଲେ ବୃନ୍ଦାବନ ନଥେ, ହଁ ଛଟା ବିପ୍ର ଇତନା ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି ଥା ଓ ଶୁଦ୍ଧ ଛଟା ବିପ୍ର ଜବ ଆକେ ବୋଲେ ଗୋପାଳ ତୁମକୁ ସାକ୍ଷୀ ବନା ଥା, ତୋ ମେରା ଯୋ ଶାଦି ହେନେ ବାଲା ଥା ଓ ଗଡ଼ବଡ଼ ହେଇଗିଆ, ଇସିଲିଏ ସାକ୍ଷୀ ଦେନେ କେ ତୁମକୁ ଉହାଁ ପି ଉପସ୍ଥିତ ହେନା ଚାହିଏ, ଉପସ୍ଥିତ ହୋ କରକେ ସାକ୍ଷୀ ଦେନା ଚାହିଏ। ତ ବିଗ୍ରହ ରୂପ ସେ ଗୋପାଳ ବୋଲେ ହେ, କୃଷ୍ଣ କହେ ପ୍ରତିମା ଚଲେ କୋଥାଓ ନା ଶୁନି, ତୁମେ ତୁମ କୁନା ଯୋ ପ୍ରତିମା ବିଗ୍ରହ ମନ୍ଦିର ଛୋଡ଼ କରକେ ବାହାର ଯାହାକି ସାକ୍ଷୀ ଦିଆ। ତୋ ଛଟା ବିପ୍ରନ୍ଦ ବୋଲେ ଆପ ତ ପ୍ରତିମା ହୋ, ପ୍ରତିମା କା ମଦର ଚୁପଚାପ ରହନା, ଆ ପ୍ରତିମା ହୋ କରକେ ବାତ ଚିଜ କର ରହେ ହୋ, ତ ବାତ ଚିଜ କର ରହେ ହୋ କ୍ୟୁଁ ନେଇ ଯା ସକେଗା। ହଁ ତୋ ଛଟା ବିପ୍ର ବିପ୍ର କହେ ପ୍ରତିମା ହୁଏ କହୋ କେନେ ବାଣୀ, ବାଣୀ କା ମଦର ବାତ କର ରହେ ହୋ, ହଁ ମେରେ ସାଥ ତୁମ ବାତ କର ରହେ ହୋ, ତ ପ୍ରତିମା କଭି ବାତ କ୍ୟା ଥା, ହଁ ପ୍ରତିମା ରୂପ ସେ ତ ତୁମ ତ ପ୍ରତିମା ରୂପ ସେ ବାତ କର ରହେ ମୁଝସେ, ତ ବାତ କର ରହେ କ୍ୟୁଁ ନେଇ ଯା ସକେଗା। ଇସିଲିଏ କୃଷ୍ଣ ଯୁକ୍ତି ସେ ଭକ୍ତ କେ ପାସ ହର ଗିଆ। ହଁ ବୋଲେ ଠିକ ହେ, ତୁମ ଆପଣା ଗାଁ ମେ ଲଡ଼ ଯାଅ, ଯାଅକେ ଏକ ସଭା ବୁଲାଅ, ଓ ସଭା ମେ ମେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇକରକେ ସାକ୍ଷୀ ଦେଉଙ୍ଗେ। ତୋ ଛଟା ବିପ୍ରଦ ଐସା ବାତ ମତ ବୋଲେ, ହଁ ତୁମ ଉହାଁ ପେ ଚତୁର୍ଭୁଜ ରୂପ ଧାରଣ କରକେ ଯାଅ ପ୍ରକଟ ହେଙ୍ଗେ, ତୁମାରି ବାତ କହି ଶୁଣେଙ୍ଗେ ନାହିଁ। ଯୋ ସ୍ୱରୂପ ହେ ଇସ୍ ସ୍ୱରୂପ ସେ ଉପସ୍ଥିତ ଉହାଁ ପେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇକରକେ ଯବ ସାକ୍ଷୀ ଦେଙ୍ଗେ, ତବ ଆପକା ସାକ୍ଷୀ ସବ ଗ୍ରହଣ କରେଙ୍ଗେ, ତବ କୃଷ୍ଣ ଓ ଗୋପାଳ ଜାନେ କେ ଲିଏ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋ ଗାଏ। ହଁ ତ ଠିକ ହେ, ମୈ ତୁମରେ ପିଛେ ପିଛେ ଚଲୁଙ୍ଗା, ହଁ ତୁମ ଆଗେ ଆଗେ ଚଲ, ତୁମରେ ପିଛେ ପିଛେ ମେ ଚଲୁଙ୍ଗା। ତ ଏସା ଯବ ବାଦ ହେଲା କଭି ମୋର କରକେ ପିଛେ ନେଇ ଦେଖନା ଚାହେ, ଯାହା ପେ ଦେଖେଙ୍ଗେ ଉହାଁ ପେ ମୈ ରହ ଯାଏଙ୍ଗେ, ଉସେ ଏକ ଇଂସ ଆଗେ ନେଇ ଯାଉଙ୍ଗା, ତି କଣ୍ଡିସନ ହୋ ଗିଆ। ଆଉ ଯାହା ପେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଯାଏ ଉସ ସମୟ ଏକ ଶେର କା ଚାଉଲ କ ଅନ୍ନ ମୁଝେ भोग चढ़ाना चाहिए, ऐसा तुम्हारे हाथ भोग ग्रहण करते करते आपका तुम्हारे गांव में उपस्थित होकर के साक्ष्य दूंगे, ये कंडीशन हो गया। तो अगले दिन क्या हुआ, छोटा विप्र वो भगवान को दंडवत प्रणाम करके जब आगे के चल रहे है, वो गोपाल विग्रह होते हुए भी मंदिर छोड़ करके उनके तो पीछे पीछे चल रहा है। अब भगवान जब चलते हैं और नृत्य के नृत्य जैसा ऐसा ही हाँ, भगवान जो कुछ बोलता है वो गीत है हाँ, चित जगत में ऐसा ही जो कुछ बोलेंगे वही गीत होता है, आओ जब चलता है वो नृत्य है। तब भगवान जब मंदिर छोड़ करके वो छठा विप्र के पीछे पीछे चल रहा है, तो कृष्ण का जो पे चरण में जो नुपुर है, नुपुर रुनुझुन 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 शब्द हो रहा है, तो छठा विप्र पता चला गोपाल मेरे पीछे पीछे आ रहे है, लेकिन शर्त है क्या, मुड़ करके कभी पीछे नहीं देखना हाँ, तो देखेंगे तो वहां पे रह जाएगा हाँ। तो ऐसा ही कितना दिन का रास्ता है, 100 दिन का रास्ता है। उस समय कोई ट्राम बस मोटर फ्लाइट ये सब नहीं था हाँ, पैदल से हाँ, पैदल से ऐसा ही भगवान वो मंदिर छोड़ करके छोटा विप्र पीछे पीछे चले चले आए आए थे। कहाँ पे, वो साउथ इंडिया जो गोदावरी नदी तट पर जो विद्यानगर है, विद्यानगर गांव में आके उपस्थित हो गए। तो छोटा विप्र उस समय सोचा तो मैं गोपाल तो मेरे पीछे पीछे आ रहा है, लेकिन शर्त था मुड़ करके कभी पीछे नहीं देखना, आज जहाँ पे देखेंगे वहाँ पे रह जाएंगे। मैं तो हमारे गांव में आ गया तो यहाँ पे जब देखभाल कर गांव में सब ये समाचार दूंगे तब तो गांव लोग आके दर्शन करेंगे, तो पहले मुझे तो दर्शन करना चाहिए। ये समझ करके जा मुड़ कर पीछे देखा तो गोपाल ऐसा ही कितना बड़ा विग्रह बांसुरी पकड़ करके खड़ा हो गए हाँ। आज छोटा विप्र प्रेम भाव से प्रणाम करके गांव अंदर में जाके बोल रहा था, आओ आओ वो गोपाल साक्षी देने के लिए वृंदावन मंदिर छोड़ करके पैदल से चलते चलते यहाँ पे आ गया। तो गांव लोग में गांव जितने सारे लोग सब आ गए, देखे गोपाल खड़ा है कितना बड़ा विग्रह हाँ, 10 आदमियों को पकड़ के नहीं ला सकते हाँ, इतना बड़ा विग्रह। तो गोपाल वहां पे उपस्थित होकर के साक्षी दे रहा है हाँ, ये दोनों विप्र तीर्थ भ्रमण करने के निकल गए गांव से, और जब मेरा मंदिर में उपस्थित हो गया वहां पे ये मुझे साक्षी बना करके ये बड़ा विप्र बोल रहा था मेरा जो लड़की है वो लड़की का छठा विप्र के साथ शादी कर दूंगा, तो मैं यहाँ उपस्थित होकर के साक्षी दे रहा हूँ। तो उस दिन से गोपाल का नाम साक्षी गोपाल हूँ, तो साक्षी गोपाल उस दिन से साक्षी गोपाल से प्रसिद्ध है विख्यात है। तो हमारा पूरी जो गजपति राजा प्रताप रुद्र जी का पिताज जो है पुरुषोत्तम देव हाँ, पुरुषोत्तम देव जगन्नाथ जी का महान भक्त है, जिनके लिए कृष्ण बलराम वो जगन्नाथ बलदेव हाँ सैनिक वेश धारण करके घोड़ा के पीठ पर सवर होकर कांचीराज विरुद्ध युद्ध करके कांचीराज को परास्त करके वो पुरुषोत्तम देव के विजयी मनाए दे हाँ। तो कितना बड़े भक्त थे हाँ पुरुषोत्तम देव। वो पुरुषोत्तम देव जब वो विद्यानगर बाद में कांची राज्य नाम हो गया था, वो कांची राजा को परास्त कर दिया। तो जब दिया था तो वो कांचीराज के जो इष्ट देव थे नटखट गणेश वो भी लेकर के आए, कहाँ स्थापन किए, जगन्नाथ जी के मंदिर पीछे जो है वो गणेश अभी भी है हाँ, वो कांचीराज के इष्ट देव है हाँ। तो वो लाकर वहाँ पे स्थापन किए, वो जो गोपाल जो है साक्षी गोपाल उनके पास जाके प्रार्थना किए, तो साक्षी गोपाल उनके साथ उड़ीसा में आने के लिए प्रस्ताव दिए हाँ। तो इसीलिए वो पुरुषोत्तम देव साक्षी गोपाल को वहां से ला करके कहाँ लाए थे, लेकर के वो उड़ीसा जो राजा का राजधानी है कटक, पहले कटक राजधानी था वहाँ पे पुरुषोत्तम देव का, वहाँ पे लाए थे, ला के वहाँ पे जब मंदिर करके स्थापन किए तो वह उस समय क्या हुआ ना, वो पुरुषोत्तम देव का रानी पद्मावती बहुत सारे अलंकार लेकर के आए थे गोपाल को देने के लिए। हाँ, तो देखा गोपाल का नाक में नशा में ये छेद छेद होता तो मेरा जो बहुत मूल्यवान जो नथ है नोज रिंग वो गोपाल का नाक में नशा में पहन देंगे, लेकिन गोपाल का नशा में कोई छेद नहीं है, होल नहीं है। तो रानी का मन में बहुत दुखी था, रानी का मन में बहुत दुख हो गया। तो आके रात में जो श्वेत है तो श्वेत है तो उस समय गोपाल स्वप्न में आके बोल रहे, रानी माँ बचपन अवस्था में मेरा माता जसोदा वो नाक में एक होल बना दिया था, वो होल है, आपका जो इच्छा है वो आपका नोज रिंग मेरा नाक में डाल सकते हैं, पान कर दे सकते हैं, देश अपना दिया। हाँ, तो क्या हुआ, रानी राजा को सब बात बताए, राजा रानी स्नान करके अपना पवित्र वस्त्र धारण करके वो नोज रिंग ले करके वहाँ पे उपस्थित है। देखा सत्यन वो गोपाल का नाक में नशा में वहाँ पे एक होल है, तो बहुत मूल्यवान नोज रिंग वहाँ पे पहनते हैं। तो वहाँ से गोपाल सखी गोपाल को बाद में कहाँ लाया था, जगन्नाथ जी मंदिर जो मेघनाथ प्राचीर है ना, वो जहाँ से पंडाव लोग जगन्नाथ जी के भोग ले जाए था उस रास्ता पर स्थापन किया था। तो वहाँ पे गोपाल सखीगढ़ फिर कौन सा लीला प्रकट किया ना, वो जगन्नाथ जी के जितने सारे सब मिठाई लड्डू पंडाल लोग लेकर जा रहे थे, वो क्या क्या वो जबरदस्ती वो छीन कर चुरा करके सब अपने खा जाते हैं। और जगन्नाथ जी का भाग्य में केवल राइस दाल सब्जी, इसके अलावा वो मिष्टे मिठाया लड़े कुछ भी मिलता नहीं। तो जगन्नाथ जी सोचा मन में, इतना दिन तो ठीक से आ रहा था हर चीज़, हाँ अभी क्यों ये सब मिलता नहीं। हाँ, तो जगन्नाथ समझ गया, ओ अच्छा वो नटखट गोपाल इधर आ गया। हाँ, बचपन से गोपियों के घर में जाके वो जो मक्खन चुरा करके खाता है वो बद अभ्यास अभी भी छोड़ा नहीं, तो इसीलिए मेरा जितने सारे मिठाई लड्डू जितने सारे है वो चुरा करके सब खा लेते हैं। तो इसीलिए जगन्नाथ जी क्या किए, पुरुषोत्तम देखो सपना देश से जाना है तुम्हारी ये नटखट गणेश यहाँ से हटाओ, क्योंकि मेरा जितने सारे मिष्टी मिठाई वो लड्डू है चुरा करके सब खा जाते हैं, क्योंकि बचपन से जो चराभ्यास है वो चराभ्यास अभी भी छोड़ा नहीं। तो जगन्नाथ जी के स्वप्न से क्या किए, राजा पुरुषोत्तम देव सखीगोपाल वहाँ से लेकर के अभी जहाँ पे है सत्यवादी गांव, हाँ वो स्थापन करके वहाँ पे 5-7 पांडा वो सखीगोपाल सेवा करने के लिए वहाँ सब ऐसा ही व्यवस्था कर दिए। तो ऐसे सेवा ठीक से चल रहा था, 5-7 गांव वो 5-7 पांडा वहाँ पे थे, तो ऐसा ही सेवा चल रहा था। कुछ दिन सेवा के बाद फिर क्या न वो रात को जो बड़ा पांडा, हाँ बड़ा पांडा गोपाल जी के विश्राम देकर कब निकल जाते हैं, तो उस समय गोपाल अपना मंदिर छोड़ करके बड़ा पांडा का लड़की जो है ना उनका घर में घुस जाता है, जाके उनके साथ विलास कर रहा था। ऐसा कुछ दिन ऐसा चल रहा था। एक दिन क्या हुआ, गोपाल अपना जो बासुरी और नूपुर छोड़ करके मंदिर में चला गया। अगले दिन दूसरे पांडा जब आए थे मंदिर खुल करके सेवा करने के लिए, देखा हाथ में बांसुरी नहीं है और चरण में नूपुर नहीं है, तो पांडा लोग तो उस समय डिक्लेयर किया, कौन ये चोरा लिया गोपाल जी का बांसुरी और नूपुर, ये तो 5-7 घर है, हर घर अनुसंधान करके देखना चाहिए। तो देखभाल करके मिला कहाँ, बड़ा पांडा के जो लड़की है लड़की का घर में। तो जितने सारे पांडा ये विचार करके क्या गया, ये बड़ा पांडा नाम से बड़ा चोर है, हाँ गोपाल जी का बांसुरी और नूपुर चोरा करके अपना लड़की को दिया है। तो इसीलिए निर्विचार से क्या किया, वो बड़ा पांडा को पकड़ करके जेल में डाल दिया। तो उस दिन रात को फिर गोपाल वो राजा के सपना में ये बताया, वो बड़ापन का कोई दोष नहीं है, क्योंकि मेरा पास मेरा जो प्रेयसी श्रीमती राधा रानी नहीं है, इसीलिए मैं वो मंदिर छोड़ करके बड़ापन्ना का जो लड़की है उनके घर में आके वैसे ही उनके साथ विलास कर रहता है। तो भूल एक दिन भूल करके वो नूपुर मछली छोड़ दिया है। तो लेकिन मेरा पास जब मेरा प्रेयसी श्रीमती राधा रानी का विग्रह प्रतिष्ठा नहीं करेंगे तो मैं जहाँ पे आया थे जहाँ से आया हूँ वहाँ से फिर वापस लौट जाऊँगा, ये बात उठाया। तो इसके बाद गोपाल जी का ये सपना आदेश सुन करके राजा क्या किया, राधा रानी के विग्रह निर्माण करके एक शुभ दिन देखभाल करके उस दिन बहुत आडम्बर से आकर यज्ञ अनुष्ठान करके गोपाल जी के बाम साइड में जब वो राधा रानी के विग्रह प्रतिष्ठा के तो उस दिन बड़ा पंडा का जो लड़की था वो अप्रकट है गई। तो उस दिन से राधा रानी वो साकी गोपाल बाम साइड में है विग्रह साधारण का विग्रह, इसीलिए गोपाल साकी गोपाल वहां पे अब भी है। तो जो बड़ा पंडा के जो लड़की था वो कोई साधारण लड़की नहीं था, वो राधा रानी का एक प्रकाश ये रूप था। ऐसा ही गोपाल विग्रह रूप धारण करके ऐसे बहुत सारे लीला प्रकट किया, इसीलिए भगवान का जो विग्रह है वो भगवान से अभिन्न है। इसीलिए चैतन्य चरितामृत में ये बताया गया है, नाम विग्रह स्वरूप तीन एक रूप तीने भेद नाई तीन चिदानंद रूप। भगवान का नाम जैसे भगवान से अभिन्न है वैसे ही भगवान का विग्रह भगवान से अभिन्न है। जैसे एक समय क्या हुआ, पंच पांडव के साथ द्रौपदी जब काम वन में थे तो उस समय दुर्वासा मुनि 10,000 शिष्य के साथ वो हस्तिनापुर दुर्योधन के राजप्रसाद में आ गए। आज शकुनी परामर्श से दुर्योधन क्या किए, बहुत सारे आइटम बना करके 10,000 शिष्य के साथ वो दुर्वासा को उत्तम रूप खिलाए, आकंठ भोजन करके सब सो गए। सोने के बाद जब सो करके उठे तो उस समय दुर्योधन आके जब प्रणाम कर रहा है दुर्वासा मुनि को, तो दुर्वासा मुनि बोला बस तुम इतना ही उत्तम सब खिला है इसीलिए मैं अत्यंत प्रसन्न हो गए, इसीलिए तुम बर प्रार्थना करो, मैं बर दूंगा। तो दुर्योधन ने बोला हे मुनिवर, जैसे 10,000 शिष्य के साथ आप ये हमारे अस्प्रसाद उपस्थित हम सभी के दर्शन देख करके धन्य बना दिया, ऐसा ही मेरा प्रिय भाई युधिष्ठिर महाराज 5 भाई के साथ वो अपने पत्नी द्रौपदी को लेकर कामक वन में है, तो अपराह्न काल वहाँ पे जाके वो सभी के दर्शन देंगे तो बहुत अच्छा है। उद्देश्य क्या था ना, द्रौपदी सूर्यदेव से एक रंधन का पात्र मिला था, वो पात्र में जब द्रौपदी कुछ भी रंधन करेंगे रंधन के बाद लाखों अतिथि को खिला सकते हैं लेकिन द्रौपदी के खाने के बाद किसी भी को खिला नहीं सकेंगे। ऐसा ही वर मिला था, तो अपराह्न का मतलब द्रौपदी उस समय खा जाएंगे, खाने के बाद वो उसमें कुछ भी नहीं रहेगा नहीं। उस समय 10,000 शिष्य के साथ जब दुर्वासा मुनि वहां पर जाएंगे और युधिष्ठिर महाराज जब 10,000 शिष्य के साथ वो दुर्वासा का खाने के लिए कोई नहीं दे सकेंगे तो अब अत्यंत क्रोध करके जब वो भी साप देंगे वो द्रौपदी के साथ 5 भाई भस्मीभूत हो जाएंगे। मैं समग्र पृथ्वी एक छत्र सम्राट बना करके रहूंगा, ये मन में ये उद्देश्य था, इसीलिए 10,000 शिष्य के साथ दुर्वासा को भेजा था। कहाँ पे, वो कामक वन उस समय द्रौपदी खा ले। तो इसके बाद 10,000 शिष्य के साथ जब दुर्वासा मुनि आ रहे थे देखभाल करके युधिष्ठिर महाराज स्वागत किए और युधिष्ठिर महाराज ने बोलो मुनिवर हमारे आश्रम में आपका आमंत्रण है आप यहाँ पे भोजन करेंगे। तो उस समय तो दुर्वासा मुनि ठीक है हम सब नित्य कर्म करने के बाद यहाँ पे आके भोजन करेंगे। तो 10,000 शिष्य के साथ दुर्वासा मुनि जमुना जल में जब स्नान करने के लिए गए थे ইদা যুধিষ্ঠির মহারাজ চার ভাইকে সাথ দ্রৌপদী সম্বন্ধে উপস্থিত করে বললে হে এসাই দশা শিষ্যকে সাথ ও দুর্বা সম্বন্ধে আয়েঙ্গে ও সবাইকে ভোজন দেনা হ্যাঁ। তো দ্রৌপদী তো উস বললে তে মেয়ে তো খা লে ইসকে বাদ কিছুকে ভোজন নেই দে সকলে। তো যুধিষ্ঠির মহারাজ বহু ভয়ভীত হয়ে গায়ে হ্যাঁ যে মেয়ে তো আমন্ত্রণকে আর নেই ভোজন ভোজন নেই দেঙ্গে তো ক্রোধ প্রকাশ করকে সাপ দেঙ্গে তো আমসব ভস্মীভূত হয়ে যায়গে মহাসংকট মূর্ত আগে। তো ক্যা করনা চাই তো দ্রৌপদী কা মন মে এ বুদ্ধি আয়া হ্যাঁ। তো ও তো কিয়া দ্রৌপদী এক সময় চিন্তন উসময় মন সোচা দ্রোধ কুরুসভা মে য বিবস্ত্র করনে কে লিয়ে দুঃশাসন মেরা শাড়ি খিঁচ রয়ে থা হুম তুস উহা পে উপস্থিত পিতামহ ভীষ্ম গুরু দ্রোণাচার্য ধৃতরাষ্ট্র সবাইকে পাশ মে অনুরোধ কিয়া সহায়তা করনে কে লেকে লেকিন কই ভাই সহায়তা নেই কিয়ে উস নিরুপায় হোকর মে কৃষ্ণ ভগবান কৃষ্ণ যদুপতি কৃষ্ণকে শরণ মে চলে গে কৃষ্ণকে যাব শরণ রে তো কৃষ্ণ ওপে কোটি বস্ত্র অবতার রূপ ধারণ করকে মুঝে লাজ বাঁচায় থা তবে ও সংকট ঘড়ি আ গিয়া তিস অবস্থা ওই ভগবান কৃষ্ণ হি কেবল হাম সবিকে রক্ষা কর সকতে হুম ইসিলিয়ে দ্রৌপদী ও কৃষ্ণকে শরণ লে করকে পুকারতে থে হে যদুপতি হে যাদব হে গোবিন্দ আমার সংকট ঘড়ি আ গিয়া তাপ আগে হম সবাইকে সংকট সে উদ্ধার কিয়ে তো উস সময় কৃষ্ণ কাহা পে থা দ্বারকা মে হ্যাঁ আর রানীও সব সেবা মে রথে তো দ্রৌপদী কাহা সে পুকারতে থে কাম্যবন কাম্যবন সে দ্বারকা কিতনা দূর হ্যাঁ বহু দূর হ্যাঁ লেকিন নাম লেখকর যা পুকারতে থে কৃষ্ণ ও পলঙ্ক সে হ্যাঁ জাম দে করকে পবন জয়সা তেজ আছে তেজ সে ওহাঁপে উপস্থিত হয়ে গে কামকবন আর দ্রৌপদীকে দেখভাল করকে বলে দ্রৌপদী দ্রৌপদী মুঝে বহু ভুক লাগ রা হ্যাঁ কুছ কুছ খানে দেও তো দ্রৌপদী হে প্রভু ইসিলিয়ে তো আপকো মে বুলা হ্যাঁ তো নেই নেই তোমারি বাত বাত মে শুনুঙ্গা অবি বুঝে কিছু খানা দো খানে দো খানেকে বাদ তুমি কন ক্যা বলা বাত মে শুনুঙ্গা তো দ্রৌপদী ক্যা করে তো উস সময় ও যে রন্ধনকে যে পাত্র হ্যাঁ লেকর আয় থে উসমে কুছ ভি নেই থা লেকিন কৃষ্ণকে ইচ্ছা সে ওহাঁ পে এক শাক হ্যাঁ কেনা থা ও এক চাউল কা হুম ইয়ে থা তো কৃষ্ণ বললো ও মুঝে হাত মে দে দো তো হাত মে যাব দে দে কৃষ্ণ মুখ মে লেকর কে বলা এক গ্লাস পানি লেকর কে পানি যা পি রা তো উস সময় কৃষ্ণকে আকণ্ঠ ভোজন হয়ে গে জসমিন তুষ্টে জগৎ তুষ্টে দশ হাজার শিষ্যকে সাথ দুর্বাসন মুনি নদী মে স্নান করে থে হ্যাঁ ও আপসে আপ সব আকণ্ঠ ভোজন হয়ে গিয়া হ্যাঁ তো সব জিতনে সারে শিষ্য দুর্বাসকে বললে গুরুদেব গুরুদেব ক্যা হুয়া স্নান করেন কি হম সবাইকে আকণ্ঠ ভোজন হয়ে গিয়া তো গুরুদেব দুর্বাসা মুনি মন মে সচারে ই পাণ্ডব লোক বহু ভগবানকে মহান ভক্ত মহান বৈষ্ণব আমার লিয়ে বহু সারে আইটেম বানায় হ্যাঁ আর যাকে যাই যদি কুছ ভি নেই খাঙ্গে তো আমার বৈষ্ণব অপরাধ হয়ে যায় কি এইবার বৈষ্ণব অপরাধ সে ক্যা মুঝে হৈরান হওয়া মুঝে পাতা হয় ও অম্বরীশ মহারাজকে বধ করনে কে লিয়ে কৃত্য সৃষ্টি কিয়া থা হ্যাঁ উস সময় ভগবান সুদর্শন চক্র উনকে ক্যাসে যে কিতনা যে হৈরান কিয়া থা ও উনকে ইয়াদ আ গিয়া তো উনহনে বলে সবই শিষ্যকে হম সব ইহাঁ সে নিকাল যাব ওহাঁ পে নেই যাওঙ্গা কেন আমার লিয়ে বহু সারে আইটেম বানা হ্যাঁ আর যাকে যাই যদি কুছ ভি নেই খাঙ্গে তো আমার বৈষ্ণব অপরাধ হয়ে যায় তো ও সমাজ করকে দশ হাজার শিষ্যকে সাথ ওহাঁ সে ভাগ গায় হুম আর ভগবান কৃষ্ণ তা যদি ভীমসেনকে বলে তুম যাকে দশ হাজার শিষ্যকে সাথ দুর্বাসাকে ওয়েলকাম করকে এধার লে আও তো ভীমসেন আয় দেহ তো দেখে কই ভি ওহাঁ পে নেই হ্যাঁ নদীকে তট পর এক মুনি নিবাস করতে তো উনকা পুছে ইধর তো দশ হাজার শিষ্যকে সাথ দুর্বাসা মুনি আয়তে ওসব কাঁ চা কাঁ হ্যাঁ তো মুনি নে বললে তো মে তো দেখা তো দশ হাজার শিষ্যকে সাথ স্নান করে দে লেকিন বাদ মে মন মে ক্যা সোচা সোচ করকে ইহা সে নিকল গয়ে হুম তা ভীমসেন আকে কৃষ্ণকে বলে ও ওহাঁ সে নিকাল গয়ে তো এইসা মহা সংকট মুহূর্ত সে ভগবান ও পাঁচ দ্রৌপদীকে সব পাঁচ পাণ্ডবকে উদ্ধার কিয়ে তো ইয়ে বাত এসিলিয়ে বলা হ্যাঁ तो द्रौपदी कामक बन में थे, भगवान कृष्ण कहाँ पे थे? द्वारका में है। यहाँ से नाम लेकर कर जब पुकारते थे कृष्ण साथ साथ वहाँ पे उपस्थित हो गए, इसलिए भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है। ऐसे ही भगवान के विग्रह भगवान से अभिन्न है, तो भगवान सर्वशक्तिमान है। तो हम जब पिछले दिन गत दिन जो बोला था भगवान के जो शब्द है, ये जो भगवान जो शब्द है इसमें भ का अर्थ क्या है, ग का अर्थ क्या है, ब का अर्थ क्या है, जीव गोस्वामी अपना जो षट संदर्भ है उनमें से एक संदर्भ है भगवत संदर्भ, वो भगवत संदर्भ में ये व्याख्या किया है, आप प्रभुपद अपना तात्पर्य में उद्धार किया है। तो भ का मतलब हम वो आलोचना क्या था गत ये स्टडी, तो वो क्या था न, भ का मतलब संभरता भरता, अर्थात संभरता भरता का मतलब पालो और रख सको, ये बात यह चर्चा हो गया हा? तो आज होगा ग का मतलब, ग का मतलब क्या है, ग का मतलब अग्रणी, आगे बढ़ाने वाला, सृजन करता, तीन अर्थ है हा? अग्रणी का मतलब क्या है, नेता है, अग्रणी का मतलब नेता, और आगे बढ़ाने वाला हा? आगे बढ़ाने वाला मन वो भक्ति पथ पर कैसे अग्रगति करके अपना धाम में जाएंगे, इसीलिए भगवान क्या करता है अपना भक्तों को, भक्तों के पास जितने सारे भौतिक संपत्ति है चीज है वो छीन लेते हैं। जैसा भगवान जब वामन रूप धारण करके आए थे बलि महाराज के यज्ञ स्थल पर, हाँ तीन पेड़ भूमि प्रार्थना चल करके बलि महाराज जितने सारे धाम वो आत्मसात कर लिया, हाँ बलि महाराज तीन पेड़ भूमि देने के लिए प्रस्तुत हो गया, लेकिन देह एक पेड़ से किया गया भूलो आच्छादित कर, छोटा छोटा पेड़ देखभाल करके चरण देखभाल करके ऐसा प्रार्थना किए, लेकिन जब बलि महाराज देने के लिए प्रतिश्रुति दे है तो उस समय देखिए भगवान वामन देव वो छठा पेड़ का मैजिक हाँ कैसा विस्तार किए, छठा पेड़ ऐसा ही विस्तार किए ये भूलोक आच्छादित कर दे, भूलोक अधिकार कर ले। फिर दूसरे पेड़ वो विस्तार कर क्या उच्च लोग जितने सारे भूव स म जन तप सत्य लोक तक अधिकार कर लिए, फिर से दूसरे पेड़ का नखन से ये ब्रह्मांड के साथ आवरण है वो आवरण को होल बना दिया, हाँ छेद बंद कर दिया, और वो होल से कारण समुद्र का पानी इस ब्रह्मांड में आ गए, उत्तरी धारा से प्रवाहित है स्वर्ग में मंदाकिनी, ये पृथ्वी पर भागीरथी और पाताल लोक भगवती, त्रिधारा गंगा के पानी बहती है, हाँ भगवान का अद्भुत लीला है। इसीलिए जयदेव गोस्वामी दशावतार स्तोत्र में ये बताया गया है वामन देव के बारे, बलि महाराज के बारे, छलय शिविक्रमणि बलि मद्भुत वामन पदन खनीर जनित जन पामन केशव धृत वामन रूप जय जगदीश हरे, केशव धृत वामन रूप, केशव ये जो शब्द है ना ये शब्द विशेष क्या होता है, क ईश्वर युक्त ब, क का मतलब क्या है, क का मतलब इस ब्रह्मांड में पहला नंबर जो जीव है वो कौन है, ब्रह्मा जी, ईश्वर का मतलब शिव जी, ब का मतलब वशीभूत, ऐसे ही बड़े बड़े देवता जिनके द्वारा वशीभूत होता है उनका केशव माना जाता, तो केशव कौन है, कृष्ण, हाँ कृष्ण का एक नाम है केशव, कौन सर्व धारण करके आए थे, वामन केशव धृत, धृत का मतलब धारण करके आए थे, कौन स्वरूप, वामन रूप धारण करके आए थे, आगे क्या किए, छले ऐसी विक्रम ने बोले अद्भुत वामन, अति सुंदर रूप धारण करके आए थे, वामन देव का रूप देखभाल करके बोली महाराज के जो लड़की रत्नावली, रत्नावली मन में सोचा ओ ये जो मेरा पुत्र होता तो मैं गोद में लेकर के स्तन का दूध खिलाऊंगी, तो वामन देव तो भगवान अंतर्जमी रूप से वो समझ गए, तो अनुमोदन किए। और जब तीसरे पे देने के लिए बाबा वो बलिमास के पास कोई धन नहीं है, शर्त तो टूट गया, तो बामन देव के इच्छा से क्या हुआ, गुरु जी नाक पास से बंधन किए किसका, बलिमारस को, बलिमारस को जो नाक पास से बंधन किया, ये देखभाल करके वो रत्नावली मन में क्रोध आ गए, ऐसा पुत्र को मैं वो बीज दे करके मार डालू, तो भगवान वो भी शरण तटस्थ कर दिया। इसी रत्नावली अगले जन्म में पुत्र ना राक्षसी बन करके आए थे ना, और श्री कृष्ण को गोद में लेकर के वो जहर कालकूट जो विष है वो स्तन कृष्ण के मुख में डाल दिया था, तो कृष्ण उनका वध करके अपना धात्री माता रूप से अपना धाम भगवत गोलक वृंदावन भेजा था। हाँ, ये अद्भुत बात है कि नहीं है। इसीलिए भगवान ने एक प्रसिद्ध श्लोक है, ओ बोकी जं स्तन कालकूटं जिगं शपदप्रसादी लेबे गोतिं धात्रं चीतं अन्नं कंग दयालुं शरणं ब्रजेम। ओ बोकी, बोकी का मतलब बकासुर का भग्नी, हाँ बहन, पुतन एक असती नारी है, लेकिन स्तन में कालकूट जहर वो लेकर आए थे शिशु कृष्ण का वध करने के लिए। शिशु कृष्ण ने क्रिया किए, वो पुतना का वध करके मातृत्व पद देकर अपना धाम गोलक वृंदावन में भेज दिया। इतना ही करुणामय व्यक्ति इस जगत में कौन हो सकता है। तो ये श्लोक सुन करके सुखदेव गोस्वामी जो घर छोड़ करके वन में चला गया, वो जो काट जो लकड़ी जो काट रहे थे कठरिया है, वो दोनों व्यासदेव जी के शिष्य थे, तो दोनों को उपदेश दिया, तुम जब वन में जंगल में लकड़ी काट रहे थे उस समय ये दो श्लोक मुख में हर समय आवृत्ति करना चाहिए। तो ये एक श्लोक है ये ओहो बो की जंग स्तन काल कूटंग जिगंग शैप दप्रसादी लेबे गोतिंग धात्रंग चितंग अन्नंग कंग दयालिंग शरणंग ब्रज। ये कृष्ण की करुणा के बारे में, कितना करुणामय व्यक्ति है कृष्ण। और दूसरे श्लोक है कृष्ण के अद्भुत गुण है, और दूसरे है भगवान के माधुर्य रूप, बहरा पीरंग नटबर बपु कर्ण कोर्णी कर्ण बिभ्रत बास कनक कोपी संग वैजंतिंग च मालम। ये भगवान के माधुर्य रूप है के बारे, तो ये दो श्लोक वैष्णव जी शिक्षा दिए थे वो दो कठोरिया को बोन में जो लकड़ी काट रहे थे, तो बोला था तुम हर समय दो श्लोक मुख में उच्चारण करना है, क्योंकि उद्देश्य क्या, सुखदेव जब बोन में घूम इधर उधर घूमेंगे तो ये श्लोक उनका काम में जब प्रवेश करेगा तो वो क्या होगा, ये श्लोक उनका आकर्षण करके मेरा पास में भेज देंगे। तो वही सदवास वही है, तो सुखदेव जब ये श्लोक जब सुना तो स्तंभीभूत हो गया, वो तो हर समय ब्रह्म चिंतन में निमग्न थे, तो उस समय चिंतन मन में सोचा परम ब्रह्म इतना ही करुणामय, इतना ही करुणामय, एक औषधी नारी पूतना जी के बकासुर का भग्नी है, वो परम ब्रह्म कृष्ण को वध करने के लिए आए थे, और परम ब्रह्म कृष्ण उनका वध करके मातृत्व पद दे करके अपना धाम गोलक वृंदावन में भेज दिया, ऐसा ही करुणामय व्यक्ति छोड़ करके मैं क्यों ब्रह्म के चिंतन में निमग्न हूँ। तो ब्रह्म चिंतन छोड़ करके परम ब्रह्म श्री कृष्ण चरण में आश्रय लेने के लिए क्या किए, वो काठेरे के पास उपस्थित गए, बोले तुम ये दो ये श्लोक किसके किस से प्राप्त है, तो उन्होंने बोला हमारा गुरु जी हो व्यासदेव। तो ये सुन करके सुखदेव वहां से चला गया कहाँ, वो व्यासदेव जी का आश्रम जो सम्मप्राश है, बद्री का समुद्र जो सम्मप्राश सरस्वती नदी तट पर, वहाँ उपस्थित होकर हर करके व्यासदेव जी के चरण प्रणत होकर के बोला आप कृपा करके भगवत शिक्षा मुझे दीजिए। तब वो व्यासदेव जी कृपा करके भगवत शिक्षा पहला किसका प्रदान किए, वो सुखदेव गोस्वामी को प्रदान किया। सुखदेव गोस्वामी नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे, एक बार जो गुरु जी का मुख से सुना हर जीवन याद रहेगा, ये नैष्ठिक ब्रह्मचारी हमारा ये याद क्यों क्यों रहता नहीं, क्योंकि हमारा शरीर से वो बीज निकाल गया, हाँ इसलिए हमारा मेधा शक्ति स्मृति शक्ति दुर्बल बन गया, हाँ बार बार बारंबार सुनने से भी याद होता नहीं, इसीलिए ब्रह्मचर्य पर इतना गुरुत्व आरोप करना चाहिए। ठीक से कोई ब्रह्मचर्य पालन करेंगे और वो जो ये सप्त धातु के जो सार है बीर्ज जब धारण करेंगे तो ऐसे ही मेधा शक्ति बन जाएंगे। एक बार जब किसी का मुख से ये भगवान के बारे श्रवण करेंगे और जीवन तक वो याद रह गए। तो ऐसे सुखदेव गोस्वामी नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे, ऐसे ही गुरु के मुख से एक बार जो सुना उससे वो भागवत ऐसा ही एज इट इज परीक्षित महाराज सभा में उपस्थित होकर ऐसा ही रिपीट किया। वहां भी उपस्थित थे कौन? श्रुत गोस्वामी। श्रुत गोस्वामी ऐसा ही नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे। सुखदेव गोस्वामी मुख से ऐसा ही एक बार सुन करके वही भागवतम फिर कहा वो आवृत्ति किए नैमिषारण्य 88,000 मुनि ऋषि के सम्मुख में वही भागवतम फिर रिपीट किया। वही भागवत है पुस्तक आकार के वो व्यासदेव जी लिखे हैं, वही भागवत हमारे पास ये है अभी। इस भागवत श्लोक पर प्रभुपाद जी की तात्पर्य है, अनुवाद है हम सभी को समझने के लिए। ते भागवतम, ते भागवतम कृष्ण के एक रूप है शब्द ब्रह्म। शब्द रूप से भागवत हमारे पास है। हम जब ये भागवत का आश्रय करेंगे तो ऐसे ही भागवत आश्रय से हम सब भगवान से उद्धार होकर के भगवत धाम में जा सकते। इसीलिए वो व्यासदेव जी का अवतार चैतन्य महाप्रभु के लीला में वृंदावन दास ठाकुर ने बताते हैं जो कृष्ण तुल्य भागवत विभु सर्वाश्रय प्रति श्लोके प्रति अक्षरे नाना अर्थ कहे। अर्थात ये भागवतम कृष्ण के साथ तुलना की गई है। हाँ, कृष्ण के 12 अंग के साथ ये भागवत 12 स्कंद तुलना की गई है कि नहीं? हाँ, तो इसीलिए कृष्ण का परिवर्तित रूप है ये भागवतम। कृष्ण जैसा विभु वस्तु है भागवत ऐसा ही विभु वस्तु है। कृष्ण जैसा हर जीव का आश्रय है वैसा ही भागवत हमारे लिए एकमात्र आश्रय है, क्योंकि ये भागवत भगवान कृष्ण के रिप्रेजेंटेटिव है। हा? तो कृष्ण तो अपना धाम चले गए, तो कृष्ण के रिप्रेजेंटेटिव स्वरूप ये भागवत हमारे लिए एकमात्र आश्रय है। हम जब ये भागवत का आश्रय करेंगे तो ये भागवत से हम सब भव बंधन से उद्धार होकर के भगवत धाम में जा सकते। इसीलिए नित्यं भागवत सेवया नष्ट प्रायशु अभद्रशु। नित्यं भागवत भक्त भागवत मुख से जब भागवत का तो श्रवण करेंगे तो हमारा जितने सारे अभद्रता है वो आपसे आप चला जाएगा, भाग जाएगा। हाँ, नित्यं नष्ट प्रायशु अभद्रशु नित्यं भागवत सेवया। इसीलिए भागवत हमारे लिए एकमात्र आश्रय है। तो ऐसा ही ये भ का मतलब ग का मतलब है अग्रणी। हाँ, आओ क्या है आगे बढ़ाने वाला और सृजन करता ग का मतलब। हाँ, समझ रहे थे। इसीलिए वामन देव ऐसा ही जब तीन पैर भूमि देने के लिए जो प्रतिश्रुति दिए थे वो जो बलि महाराज दो पैर से सब छीन लिया अस्त व्यस्त कर दिया उनका, तब क्या है तो तीसरे पे ये कैसे उसके ये देंगे, तो वो बोले महाराज सोच ये मन में सोच करके सोचा मेरा तो जितने सारे भौतिक धन था तो ले लिया दो पैर से, तब मैं मुझे अभी ये शरीर केवल है। तो शरीर को दे दिया तीन पाद तीन पे तीसरे पे स्थापन करने के लिए, तो बोले महाराज अपने आत्मसमर्पण कर दिए। तो जब आत्मसमर्पण इसीलिए वो नौदा भक्ति नौविधा जो भक्ति है लास्ट जो है आत्मनिवेदनम, तो बोले महाराज अपना को निवेदन कर दिया भगवान को। तो इसी समय वामन देव तीसरा फेर बोले महाराज सिर पर रखा। अब बोले महाराज कहाँ भेजा था? सुतल में। हाँ, सुतल में भेज करके वहां पे राजा बना दिए। किसका? बोले महाराज को। आ वहां पे वामन देव बोले महाराज के द्वारा बंदी हो गए, क्योंकि वामन देव वहां पे गेट कीपर बना करके बोले महाराज को सुरक्षा दे रहा है। वामन देव आए है बोले महाराज के बंधन किए। अभी बोले महाराज जब आत्मसमर्पण के दिए तब क्या है वामन देव बोले महाराज को द्वारपाल बन गए। वहाँ पे सुताल में बलिमारा राजा बन गए और राजा के द्वारपाल रूप से कौन वहाँ पे विराज कर रहे वामन देव। हाँ, ये भगवान का अद्भुत लीला है कि नहीं। तो इसीलिए बलि महाराज को भक्ति बलिमारा भक्ति प्राप्त है। हाँ, महासंपद दे है। तो इसीलिए ये वामन अवतार लेकर के भगवान जो लीला प्रकट किए, इस अवतार में भगवान ये शक्कर स्थापन के किसके साथ? वामन देव के साथ। हाँ, ये बलि महाराज के साथ। हाँ, बलि महाराज के साथ ये शक्कर शक्कर स्थापन करके शक्कर आस्वादन किया। तो ऐसा ही भगवान किसी पर जब कृपा करेंगे, उनके पास जितने सारे भौतिक धन है वो छीन लेता है। जैसे हमारा इस्कन का प्रतिष्ठाता आचार्य शिल ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। हाँ, प्रभुपाद का ये मेडिसिन का दुकान था। हाँ, वो इलाहाबाद में दुबई का। तो बहुत सारा पैसा उससे माने इनकम होता था। हाँ, तो एक दिन क्या है प्रभुपाद वो गीता के वाणी प्रचार करने के लिए अपना नौकर पर वो दायित्व दे करके चले गए। कहाँ? झांसी प्रचार करने के लिए। उस अवसर में क्या हुआ, तो प्रभुपाद के जो नौकर था वो जितने सारा अच्छा अच्छा सा मूल्यवान मेडिसिन था और जितने सारे वो अर्थ था लेकर के भाग दे भाग गए। तो ये संग जब ये समाचार जब मिला प्रभुपाद को, तो प्रभुपाद के पास उस समय कुछ भी नहीं था, जीव उस समय खाली था। हा? उनके पास कोई अर्थ नहीं था। इसीलिए प्रभुपाद के जितने सारे आत्मीय सज्जन बंधु बांधव रिलेटिव था वो प्रभुपाद को छोड़ दिया। हाँ, तो प्रभुपाद उस समय मन में सोचा ये भगवान की एक अपार कृपा है। अनुगृहणति हरिष्य तद धनं शनै, ये श्लोक आवृत्ति के प्रभुपाद। तीसरा प्रभुपाद क्या किए, वो वृंदावन में जब थे तब ये तो संसार छोड़ करके जब वृंदावन में चले गए वो एकांत स्थान में अवस्थान करके ये वृंदावन भजन ये गीत लिख रहे थे। तो वहाँ पे ये प्रभुपाद उल्लेख किया, अर्थहीन देखी मरे छेड़े सबाई, कुटुम्ब आत्मीय बंधु जान भाई, दुख हाय हासि पाय एका बसे हासि, मायार संसारे काके भालोबাসি। हाँ, बहुत अच्छा गीत है। हाँ, जब प्रभुपाद के पॉकेट में, हाँ, जेब में पैसा था तो जितने सारे रिलेटिव उसके साथ अच्छा तरह प्रीति कर रहे थे। हाँ, अच्छा तरह संबंध से। जब प्रभुपाद जेब खाली हो गया वो जितने सारे रिलेटिव प्रभुपाद को छोड़ दिया। हाँ, तो प्रभुपाद इसीलिए मन में सोचा ये आत्मीय स्वजन बंधु बांधव, हाँ, स्त्री पुत्र परिवार ये सब माई के संबंध है। माया के संसार में ये माई के संबंध, ये वास्तव संबंध नहीं है। वास्तव संबंध हम किसके साथ करना चाहिए? भगवान कृष्ण के साथ। तो प्रभुपाद मन में ये समझ करके भगवान की प्रशंसा कर रहा है, भगवान मुझ प्रति ऐसा ही कृपा किए, मेरा जितने सारे धन था वो तो छीन ले, मेरे जितने सारे भौतिक संबंध था वो भी छेद किए। हाँ, तो प्रभुपाद 100% कृष्ण के शरण ले। हाँ, ले करके अपना गुरुजी का जो आदेश था वो पालन करने के लिए प्रस्तुत हो गए। हाँ, इसलिए वो प्रभुपाद अपना गुरु भक्ति सिद्धांत सरेटर का जो 62 वर्षपूजा जो बॉम्बे में हुआ था। हाँ, इस बॉम्बे में जब हुआ था तब भक्ति सिद्धांत सरेटर उपस्थिति में प्रभुपाद अंग्रेजी में एक कविता लिखा था। हाँ, माई लॉर्ड एंड मास्टर हिज डिवाइन ग्रेस। तीस कविता जब आवृत्ति किए थे तो कविता सुन करके भक्ति सिद्धांत सरेटर इतना प्रसन्न हो गई। व्यास पूजा के शेष अंत में उनके जितने सारे प्रिय शिष्य थे सबको बुला करके बोल रहे थे, देखो अभय कैसे मेरा मनोभाव समझ करके अंग्रेजी में ये प्रकट किया है। तुम में से एक स्टैंजा है, एब्सोल्यूट इज सेंसिएंट दाउ हैज प्रूव, इम पर्सनल कैलामिटी दाउ हैज मूव, This gives us a life, a new and fresh. Worship thy feet, your divine grace. Bhakti Siddhanta Saratagu. Ye kovita shunkar ke itna prasanna ho gaye, to Bhakti Siddhanta Saratagu je guru kripa, haan, unke paas je guru kripa hai, wo avay charan par barshet ki hai. आप प्रभुपाद ऐसा ही अपना गुरु जी की कृपा से हर दुनिया में चैतन्य महाप्रभु वाणी फैल दिया. वृद्धावस्था 70 साल उम्र, उसी समय कोलकाता छोड़ करके पाश्चात्य देश जागे, ये चैतन्य महाप्रभु की वाणी पाश्चात्य देश में फैल दिया. ऐसा ही 1 साल ऐसा ही प्रचार करके इस्कॉन स्थापित किया. तो ये इस्कॉन 4 स्तंभ पर आधारित है. पहले है बुक्स ऑफ द बेसिस, प्रभुपद हमारे लिए जो सब किताब दिए है ये भक्ति ग्रंथ माना जाता है कि नहीं. हाँ, प्रभुपद ग्रंथ पढ़ने से वो आदमी आपसे आप कृष्ण का भक्त बन जाएंगे, है कि नहीं. इसीलिए प्रभुपद के किताब ठीक से पढ़ाई करना चाहिए, वैसे ही आचरण करना चाहिए. ह्यूमिलिटी इज द प्रिंसिपल, यह नीति है. उससे क्या होता है, प्योरिटी इज द फोर्स, हमारे शुद्धता बढ़ जाएगा. अशुद्धता जब बढ़ जाए तो क्या करना चाहिए, प्रीचिंग इज द एसेंस, ये प्रचारी सार, क्योंकि प्रचार करके दूसरे आदमी को उद्धार कर सकते. जब ये प्रभुपाद के ग्रंथ पढ़ करके ऐसे आचरण करके अपना प्योरिटी बढ़ाएंगे, तो प्योरिटी से प्रचार करके दूसरे आदमी को उद्धार कर सकता है. इसीलिए हम सभी को प्रभुपाद का किताब ठीक से पढ़ाई करना चाहिए, ऐसा ठीक से आचरण करना चाहिए. आचरण करके हमारे प्योरिटी बढ़ाना चाहिए. प्योरिटी जब बढ़ जाएगा तब प्रचार करके दूसरे आदमी को उद्धार कर सकते हैं. इसीलिए इस्कॉन ये पहले है, प्रीचिंग इज द एसेंस, प्रचार केंद्र है. प्रचार होने से इतना ही भक्त बने रहे है कि नहीं. हाँ, बढ़ते रहते हैं, है कि नहीं. प्रचार होना चाहिए. पहले प्रचार के पहले हम सभी के ठीक से वो भगवान का नाम, ये भगवान नाम में भगवान ने हर शक्ति अर्पित किया है, ये नाम शुद्ध भाव से लेना चाहिए. इसीलिए वैष्णव गीत में बताते हैं, अपराध शून्य है लहो कृष्ण नाम, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण, कृष्णेर संसार करो छाड़ी अनाचार, जीवे दया कृष्ण नाम सर्वधर्म सार. जितने प्रकार धर्म है, हर धर्म में से सार क्या है, कृष्ण नाम. हम सभी को ठीक से करना चाहिए. जीवे दया, वही नाम दूसरे को उपदेश देना चाहिए. आप ठीक से आचरण करके जब नाम लेंगे, जब आपके अंदर में ज्यादा प्योरिटी बढ़ जाएगा, तो आप प्रचार करके वो नाम दे करके दूसरे आदमी को उद्धार कर सकते. ये जीव के प्रति वास्तव दया है कि नहीं. इसीलिए हम सबको ठीक से नाम करना चाहिए. इसीलिए बहुत प्रकार अपराध है, 4 प्रकार के अपराध, नाम अपराध. हाँ, हमारे जो मंगल आरती पर जो ये आवृत्ति कर रहे हैं वो नाम अपराध, 10 प्रकार के नाम अपराध. वैसे ही ठाकुर जी के सेवा अपराध है, धाम अपराध है, वैष्णव अपराध है. ये 4 प्रकार अपराध से अपना को बचाना चाहिए. फिर से क्या करना चाहिए, अनाचार है, दूत अंग पान स्त्री सुनाई, ये 4 प्रकार को अधर्म है, वो छोड़ करके जब शुद्ध भाव से नाम लेंगे, तब ये नाम प्रेम नाम है, आपको प्रेम प्रदान करेंगे. ये हमारा जीवन का चरम लक्ष्य है, प्रेमा पुमार्थ महा. ये मनुष्य जीवन मिला है, लाखों लाखों मनुष्य इतना शरीर घूमने के बाद, ये मनुष्य शरीर किसके लिए, प्रेमा पुमार्थ महान, कृष्ण प्रेम प्राप्त होने के लिए. किसका मत है, ये श्री चैतन्य मत वेदं तत्र अदर न परे, चैतन्य महाप्रभु का मत है. चैतन्य महाप्रभु कौन है, वही कृष्ण है, वही जगन्नाथ है. इसीलिए चैतन्य महाप्रभु का मत छोड़ करके दूसरे बहुत सारे पागलवाद है. हा? जितने मत इतने उतने ही पथ है, वो सब पागलवाद है. हाँ, वो सब छोड़ करके केवल चैतन्य महाप्रभु का जो मत, वही मत प्रकट करके ऐसा ही हम सभी को गति करना चाहिए. तब ये नाम ठीक से ले करके हम सब कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाएंगे. और कृष्ण प्रेम जब प्राप्त हो जाएगा, हमारे जीवन का चरम लक्ष्य ये जब प्राप्त मिल जाएगा, तब हम ये कोली के कवल से, माया के चंगुल से, भव बंधन से, जन्म चक्र से उद्धार होकर के नित्य आनंदमय धाम गोलक वृंदावन भगवान के पास पहुंच जाएंगे। हाँ, इसीलिए हम सभी के ठीक से भगवान का नाम लेना चाहिए। कलिजुग की एकमात्र धर्म है, कलिजुग के नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम होते है सर्व जगत निस्तार। हाँ, ये कलिजुग आदमी के लिए एकमात्र धर्म है भगवान का नाम। हाँ, नाम बिना कली काले नहीं आर धर्म, सर्व मंत्र सार नाम यही शास्त्र मरो। हाँ, सभी शास्त्र की यही कंक्लूजन है कलिजुग आत्मी के लिए भगवान का दिव्य नाम। तो नाम लेंगे क्या है, जाए सकल विपद भक्ति विनोद बोले जखन वो नाम गाय। हाँ, तो बहुत बात है अभी। हाँ, तो थोड़ा बोल करके समाप्त करना। तो ये देवकी माता देवकी कृष्ण के पास ये प्रार्थना करे, भगवान तो असली रूप द्विभुज है, द्विभुज रूप से उनके पास प्रकट होना चाहिए, चतुर्भुज रूप लेकर के क्यों प्रकट है। तो भगवान बोल रहे है जे इसके पहले दो जन्म, हाँ, आप दोनों ही मेरे पिता माता थे। देवकी पहले वो जो प्रिश्नी थे, हाँ, प्रिश्नी थी, और वो जो वसुदेव पहले जन्म में वो सुतपा थे, हाँ, पवित्र प्रजापति सुतपा थे। तो वो दोनों के पुत्र रूप बन करके भगवान आए थे, कौन सा रूप लेकर, प्रिश्नी गर्भ। हाँ, इसके बाद दूसरे जन्म में वही प्रिश्नी सुतपा आए थे अदिति और कश्यप रूप लेकर के, फिर भगवान वो दोनों को पुत्र रूप लेकर के आए थे वामन अवतार, हाँ, वामन अवतार, हाँ, लेकर के, और तीसरे जन्म फिर भी वो पुत्र बन करके आए हैं। इसीलिए वो दोनों देवकी वसुदेव को ये विश्वास दिलाने के लिए जो मैं भगवान हूँ, इसीलिए चतुर्भुज रूप लेकर के प्रकट है। द्विभुज मनुष्य रूप लेकर के जब प्रकट होंगे तो देवकी वसुदेव के ये समझ में वो उसमें आता नहीं जो ये भगवान है कि नहीं। हाँ, जैसे भगवान ये जन्म लेते हैं, ये विश्वास दिलाने के लिए भगवान चतुर्भुज रूप धारण करके प्रकट है। हाँ, तो विश्वास हो गया ये साक्षात भगवान है, हमारे पुत्र बन करके आए थे। लेकिन ये भगवान का जन्म है, इसलिए भगवान कृष्ण गीता में बताता है, जन्म कर्म उच्च में दिव्यम एवं जो व्यति तत्त त्यक्त देहं पुनर्जन्म नैति मामेति स अर्जुन। ये भगवान का जन्म है। हाँ, ऐसा साधारण मानव शिशु के, मानवीय शिशु के भांति मातृगर्भ से नग्न अवस्था, हाँ, बहुत सारे मैला गंदा, हाँ, देह में रहता, हाँ, रो रो कर क्या क्या कर, हाँ, साउंड करके जन्म लेता है। ऐसा ही नहीं, भगवान सुसज्जित, हाँ, शंख चक्र गदा पद्म और सिर में हेलमेट है, हाँ, मुकुट है, हाँ, गला में वैजयंती माला है कि नहीं, पीत भाषण है। ऐसे ही भगवान का जन्म ये दिव्य है कि नहीं, ठीक से समझना चाहिए, भगवान का जन्म दिव्य है। हाँ, इसीलिए भगवान गीता में बताया, जन्म कर्म च में दिव्यम एवं जो व्यक्ति तत्व त्यक्त देह पुनर्जन्म नीति समिति स अर्जुन। आजकल बहुत सारा असुर आदमी लोग बोलते हैं, वो तो जरा व्याद ये कृष्ण को तीर विद्ध करके मार डाले, हाँ, भगवान तो मर गया, कृष्ण तो मर गया, तो वो आदमी का पता नहीं है कृष्ण का जन्म कैसा है। हाँ, इसके बारे कोई याद नहीं है। तो ये वो तो असुर आदमी है। हाँ, वो अपने को भगवान बनाने के लिए कृष्ण के ऐसा ही पहले मार डालते है कि नहीं। हाँ, तो ऐसा ही असुर आदमी है। तो भगवान का जन्म कैसा है इसके बारे कोई पता नहीं है। हाँ, भगवान जो रासलीला कर है वो आदमी वही लीला करने के लिए बहुत प्रयास है। कृष्ण कैसा जो कालियों का दमन किए थे, हाँ, सात साल की उम्र कैसा गोवर्धन पर्व का धन, उसके बारे कोई बात नहीं है। कृष्ण जो दूसरे आदमी के स्त्री के साथ कैसा राशि लेके वही करने के लिए सब प्रयास कर रहे हैं, ये असुर है। तो भगवान एकमात्र एंजॉयर है कि नहीं, हाँ, वही एकमात्र पुरुष है कि नहीं। हाँ, तो ये भगवान है। तो भगवान जब चतुर्भुज रूल करके सब समय में प्रकट है, तो भगवान को छिपाने के लिए देवी देवी प्रार्थना कर रहे हैं। हाँ, ये आप यदि यो साधारण मानवीय शिशु रूप धारण करेंगे तो मैं किसी न किसी उपाय से छिपा रखेंगे। हाँ, तो इसीलिए देवकी वसुदेव प्रार्थना से वो भगवान चतुर्भुज रूप से फिर असली रूप द्विभुज ये मानवीय रूप धारण की, ये भगवान का असली रूप है द्विभुज। इसीलिए चैतन्य चरितामृत में बताया गया है जो कृष्णेर जतेक लीला सर्वोत्तम नर लीला नर बपु है ताहार स्वरूप कैसा गोपो बेश बेनु करो नव किशोर नट बरो नर लीला है अनुरूप। हाँ, गोपो बेश कहट बॉय जैसा गोपो बेश बेनु कर हाथ में बांसुरी है, नव किशोर 11 साल का उम्र वो किशोर है और एक्सपर्ट डांसर, नोटोबर का मतलब एक्सपर्ट डांसर है। नोटो नोटो मीन्स डांसर, बोर का मीन्स एक्सपर्ट डांसर है। तो भगवान ही एक एकमात्र एक्सपर्ट डांसर है, इसीलिए वो भगवान रासलीला प्रकट किया है कि नहीं। और शिव जी है नटराज, शिव जी जब नृत्य करेंगे ये सृष्टि का प्रलय हो जाएगा। शिव जी का नृत्य से क्या होगा, सृष्टि प्रलय हो जाएगा। और भगवान के नृत्य से हर दुनिया में आनंद भर जाएगा। इसीलिए नट बर और नट राज है कि नहीं। तो भगवान देवकी वसुदेव प्रार्थना से द्विभुज नर शिशु रूप धारण किए। तब तो वसुदेव ये संतान को, पहले तो 6 संतान कंस के हाथ में दिया था, कंस तो मार डाले, इस संतान को वसुदेव वो कंस के हाथ में नहीं दिया गया। वसुदेव शर्त किया थे कंस के साथ, मेरा जितना सारे संतान हो गए सब आपके हाथ में दे दूंगा। हाँ, लेकिन इस संतान को नहीं दिए क्योंकि साक्षात भगवान है, इतना सुंदर। हाँ, भगवान करो तो ये भगवान के कृष्ण को लेकर के वसुदेव कहाँ चले गए, गोकुल में छिपाने के लिए। हाँ, जशोदा एक लड़की है, वो लड़की को ले आकर के आएंगे और ये संतान उनके पास रख देंगे उनके पास। हाँ, ये भगवान का लीला है। तो जन्म लीला चीज जगत में नहीं है, ये लीला इस जगत में प्रकट करने के लिए भगवान ब्रह्म का दिन में एक बार आते हैं। ऐसे जन्म लीला, बाल लीला, पौगंड लीला, वो पर क्या रस लीला और क्या असुर मारण लीला, ये प्रकट करने के लिए भगवान कृष्ण अपना धाम गोलकृंदावन छोड़ करके इस जगत में एक बार आते हैं। तो टाइम ज्यादा हो गया। तो हाँ, तो भगवान, तो भ ग ग का मतलब मिल गया, ब का मतलब है निवास करना। हर जीव भगवान में निवास करते हैं और भगवान हर जीव के हृदय में निवास करते हैं। ये भ ग ब ये जितने सारे अर्थ है, अर्थ लेकर के व्यासदेव जी के पिता पराशर मुनि भगवान के बारे एक संज्ञा लिखा है। वो कौन, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य जशस्य श्रेय ज्ञान वैराग्यस्य सन्नंग भोग इतिंगन, ये 6 प्रकार के ऐश्वर्य जिनके पास पूर्ण तरह है वही भगवान है। तो वो भगवान कौन है, सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान। हाँ, तो भगवान सर्व अवतार, जितने सारे अवतार है और अवतार का स्रोत है कौन है, भगवान कृष्ण। वही कृष्ण 6 प्रकार ऐश्वर्य से परिपूर्ण है कि नहीं। इसीलिए वो भगवान कृष्ण, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये महाजनों के बात है कि नहीं। 12 महाजन है, सभी महाजन की एक बात है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं सर्वशक्तिमान है। वही कृष्ण के पास पूर्ण ऐश्वर्य है, पूर्ण वीर्य है, शक्ति है, ऐश्वर्य जश पूर्ण जश उनके पास है, वो ऐश्वर्य जश श्री पूर्ण सौंदर्य उनके पास है, पूर्ण ज्ञान उनके पास है और पूर्ण वैराग्य उनके पास है। भगवान कृष्ण हमारे लिए जो गीता ज्ञान दिया है वो सर्वोत्तम ज्ञान है, इससे अलावा दूसरे कोई ज्ञान नहीं है, है कि। हाँ, इसीलिए श्रीमद् भगवद गीता ये सर्वोत्तम धर्म ग्रंथ माना जाता है, सर्वोत्तम ज्ञान है। हाँ, तो भगवान कृष्ण ही एकमात्र भगवान है, सर्वशक्तिमान है। तो अपने इच्छा से हर प्रकार रूप धारण करते हैं और फिर वो अपने ऐसे प्रकट होते हैं, अंतरित होते हैं। इसीलिए वसुदेव देव की प्रार्थना से वो चतुर्भुज रूप से फिर द्विभुज शिशु रूप धारण किया। जय ग्रंथराज श्रीमद् भगवतम की, जय श्री गौर निताई की। जय श्री राधा राजबेरी ललिता विशाखा शकवृंद की, जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, जय जगत गुरु श्री प्रभुपाद की, जय ग्रंथराज श्रीमद भगवतम की, जय शवेद भक्त वृंद की, निताई गौर प्रमानंदे हरे बोल मुंबई जुहू ठीक है ठीक है। किसी का प्रश्न है सब समझ गया था ज्यादा समय है क्या ना हाँ ठीक है हाँ थैंक यू हाँ जय श्री प्रभुपाद की ठीक है।